हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आपके पूना के मंदिर में हर साल ये पुष्याभिषेक का उत्सव होता है। पिछले साल भी आप थे यहाँ। एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा, ये पुष्याभिषेक कैसे मनाया जाता है? तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कहा, दस ऑन दिस डे डिवोटीज डेकोरेट राधा एंड कृष्णा विद ब्यूटिफुल फ्लावर ड्रेसेस एंड शावर एबंडेंट फ्लावर्स on them to give them to give pleasure to them. Those who behold this beauty lose all interest for sense enjoyment and develop an ardent desire to serve the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. So ek bhakt ne Prabhupada ji se pucha, ye pushyabhishek kaise manaya jata hai? So Prabhupada ne kaha, is then Radha aur Krishna का बड़ा खूबसूरत श्रृंगार होना चाहिए और हमें राधा कृष्ण का श्रृंगार करना चाहिए फूलों के साथ, और फूलों की बारिश बरसनी चाहिए भगवान पर। और इसका लाभ क्या होगा? जो व्यक्ति ऐसे उत्सव में भाग लेते हैं उनका भौतिक आकर्षण घट जाता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ता है। तो आप सब जिन्होंने आज इस उत्सव में भाग्य दिया, आप सबका क्या परिणाम होगा? आपका भौतिक आकर्षण घटेगा और क्या बढ़ेगा? दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप कहो हम तो आध्यात्मिक आकर्षण भी बढ़ाना चाहते हैं और भौतिक भी, ये संभव है? अगर भौतिक आकर्षण बढ़ाना है तो बहुत आध्यात्मिक आकर्षण घटेगा, और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाना है तो भौतिक आकर्षण बढ़ेगा। तो हमारे शास्त्र में आप कई स्थानों में पढ़ते हो कि फूलों की वर्षा भगवान पर गिरी। आठवें स्कंद में आप देखते हो कि जब अदिति और कश्यप के घर में भगवान वामदेव प्रकट हुए तो देवताओं ने इतने फूलों की बारिश बरसी कि उनका पूरा मकान भर गया था। किसके साथ? जैसे आज आपने देखा कि पंखुड़ी किसे भगवान को ढका गया था लगभग। और आप शास्त्रों में देखते हो दसवें स्कंद में जहाँ के भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है कि जब भी किसी असुर का वध होता था देवता इतने प्रसन्न होते थे कि क्या आप फेंकते थे फूल। जब कृष्ण और बलराम मथुरा में गए मथुरा नगर को देखने के लिए तो सारी औरतें अपने मकानों के कोठे में खड़े होकर भगवान पर फूल फेंक रहे थे। और कई बार देखा जाता है कि जब भक्त हरि नाम करते हैं या कोई हरि नाम करते हैं या प्रचार में जाते हैं, कई लोग हरि नाम पार्टीज पर फूल फेंकते हैं कि नहीं? तो भगवान को सजाना फूलों के साथ, भगवान की सेवा करना किसी न किसी माध्यम से ये भक्ति का एक अंग है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया है चैतन्य चरितमृत में। पर अंत में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि 64 अंगों में ये 5 अंग जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हैं। अब मेरे बाद दोहराओगे ये 5 अंग? साधु संग नाम कीर्तन
भागवत श्रवण
मथुरा वास श्री मूर्तिदान श्रद्धाय सेवना। चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो 64 अंगों का वर्णन किया, और फिर उन्होंने कहा 64 अंग महत्वपूर्ण हैं, इनमें जो 5 हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये 5 अंग कौन से हैं? साधु संग। साधु संग का अर्थ आप सब समझते हो, भक्तों की संगत में रहना, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना, श्रीमद् भागवत का श्रवणम करना, मथुरा या पूना में निवास करना और भगवान के विग्रह की उपासना करना श्रद्धा और आदर के साथ। तो आज आपने देखा कि किस प्रकार भगवान के राधा कृष्ण की मूर्ति की सेवा की गई फूलों के माध्यम से। भगवान बड़े दयालु है। पतित आत्माओं के लिए भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के रूप में और उनके आर्चा विग्रह के रूप में या मूर्ति के रूप में। कम बुद्धि के व्यक्ति ये कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, तुम लोग क्या मूर्ख हो, इसमें क्या भगवान उपस्थित हो सकते हैं? ये बात जरूर है। कई दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा असंभव है, पर अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में भी कई हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जो क्या कहते हैं ये तो पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की है, इसमें भगवान कैसे उपस्थित हो सकते हैं? आपने सुना ही है। एक समय एक बड़ा सज्जन मुझे मिलने आया था दिल्ली में, तो मैंने उन्हें कहा ऊपर जाइए दर्शन के लिए, कई बार कहा और वो टालते गया ऊपर जाना। अक्सर लोग तरसते हैं भगवान का दर्शन लेने के लिए, वे टालते गया। फिर अंत में मुझे कहने लगा मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता। तो हमें उन्हें समझाना पड़ा कि मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान पतित आत्माओं के उधार के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। किस रूप में? आर्चा विग्रह के रूप में। और इस आर्चा विग्रह की पूजा होनी चाहिए शास्त्रों पर आधारित, गुरु साधु शास्त्र। शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, और साधु गुरु परंपरा द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान की पूजा उपासना किस रूप से करनी चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, एक बड़ा डाकखाना और छोटे मेल बॉक्स। आजकल मेल बॉक्स दिखते ही नहीं, और प्रभुपाद जी के ज़माने में मेल बॉक्स कोने कोने में होते थे और बड़ा डाकखाना था। तो अगर आप ऑथराइज मेल डाकखाने में मेल बॉक्स में चिट्ठी डालोगे तो ठीक स्थान पर पहुंच जाएगी, है कि नहीं? और अगर आप नकली मेल बॉक्स लगा दो अपने घर के आगे और वहाँ पत्र डालो, पत्र आगे पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा। तो इसी प्रकार जब भगवान की उपासना सेवा शास्त्रों पर आधारित की जाती है और प्रमाणिक गुरु द्वारा उस मूर्ति की स्थापना की जाती है, तो उस मूर्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो आप जब मंदिर में आते हो, श्री श्री गौरनिताय का दर्शन प्राप्त करते हो, श्री श्री राधा कुंज बिहारी का दर्शन प्राप्त करते हो, आपको ये नहीं सोचनी है, सोचना चाहिए ये तो पत्थर की मार्बल की मूर्ति है, अच्छे कारीगरों ने बनाई है इसलिए खूबसूरत दिखती है। कई बार लोग आते हैं हमारे मंदिरों में, जैसे आप जानते हो इस्कॉन के मंदिरों में ठाकुर जी की सेवा 100% शास्त्रिक शिक्षा के आधार पर की जाती है, ये नहीं कि किसकी कल्पना, ठीक समय पर मंगल आरती होती है, ठीक समय पर दर्शन आरती होती है। तो ये अवश्य है कि ठाकुर जी की सेवा की जाए, स्थापना की जाए शास्त्र पर आधारित। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो आर्चर विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और हम बस जीवों को मौका देते हैं उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। हम सेवा में कैसे जुड़ते हैं? उनका श्रृंगार करके, उनके लिए भोजन बनाकर, उनकी आरती करके, उनके सामने नाच के और गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो मैं आपको कह रहा था कि कई बार लोग पूछते हैं हमारे मंदिरों में, आपकी मूर्ति कहाँ बनी है? जयपुर में? क्यों? हम पूछते हैं क्यों, बहुत खूबसूरत दिखती हैं। तो हमें उन्हें समझाना पड़ता है इन मूर्तियों की खूबसूरती कारीगर की कला पर निर्भर नहीं है, इन मूर्तियों की खूबसूरती निर्भर है भक्ति की कला के ऊपर। जो भक्ति के साथ करेगा तो भगवान खूबसूरत दिखते हैं। तो ये नहीं कि भारत में दूसरे सेठों के पास हमारे से कम पैसा है, वो हमारे से 10 गुना ज़्यादा पैसा देकर मूर्तियाँ बना सकते हैं, पर खूबसूरती आएगी जब भगवान की सेवा की जाए श्रद्धा के साथ। तो शास्त्रों में इस विषय पर बल दिया गया है, भक्ति रस हमने तो सिंधु की रचना श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। रूप गोस्वामी एक समय सरकार के बड़े अधिकारी थे, पर उनकी रुचि नहीं थी इस कार्य में, उनकी रुचि थी चैतन्य महाप्रभु जी की सेवा में जुड़ने के लिए। तो रूप गोस्वामी सरकारी नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षा प्राप्त की प्रयाग में, और महाप्रभु ने उन्हें आदेश दिया भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए। तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जैसे कल आपने गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव निमाकुण आविर्भाव मनाया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी भी बड़े प्रसिद्ध आचार्य थे, जिन्होंने हमें कई ग्रंथ दिए हैं। तो रूप गोस्वामी जी ने कई ग्रंथ दिए हैं, जिनमें 2 ग्रंथों का अनुवाद शर प्रभुपाद जी ने किया है। ये 2 ग्रंथ कौन से हैं? भक्ति रसामृत सिंधु और श्री उपदेश रामृत। नरोत्तम दास ठाकुर एक प्रार्थना में कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे हई बे अकूति कबे हमा हेरा बहुत से युगल फिरी थी। कब वो प्रसिद्ध दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अध्ययन करूँगा। रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बड़ी गहराई के साथ भगवान के आर्चर विग्रह की चर्चा की है, किस प्रकार से हमें अपराधों से बचना चाहिए और क्या सेवा के लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है। तो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं आर्चा विग्रह के रूप में। इस आर्चा विग्रह और भगवान में अंतर है? भगवान के नाम उनमें अंतर है? अगर भगवान के नाम उनमें अंतर होता तो ये संभव है कि आप रोज भगवान का नाम ले सको? आप लोग नौकरी में जाते हो और तरसते हो कब इतवार आएगा कब शनिवार आएगा, है ना? विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं और तरसते हैं कब छुट्टियां आएंगी, है ना? पर आप कभी भगवान से ऐसे कहते हो, हम हफ्ते में 5 दिन जाप करेंगे 2 दिन छुट्टी? नहीं, हम रोज कर पाते हैं क्योंकि भगवान ने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। इसी प्रकार भगवान ने, भगवान और उनके आर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं। तो जब आप भगवान के समक्ष खड़े होते हो, आपका ये भाव होना चाहिए कि यहाँ है स्वयं भगवान, और ध्यान से भगवान को अपने हृदय में बिठाना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब कहा ये 5 अंग महत्वपूर्ण हैं, 5 अंगों में एक अंग क्या था? श्रद्धा और आदर के साथ आचार्य विग्रह की उपासना करना। तो भगवान इतने दयालु हैं, छोटी मूर्ति के रूप में भी उपस्थित हो जाते हैं। जैसे हमारे गृहस्थ भक्तों के घरों में गौ निताई का विग्रह है। आप में से कितने भक्त हो जिनके घर में गौणिताई के विग्रह हैं, तो भगवान इतने, और कितने भक्त हो जिनके घर में राधा कृष्ण का विग्रह है। तो चाहे मूर्ति छोटी हो या बड़ी, हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो छोटी मूर्ति है, भगवान की मूर्ति नहीं है। भगवान अपने आप को आर्च्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं, और इस आर्च्य विग्रह भगवान में अंतर है, कोई अंतर नहीं। हमारे शास्त्र में अनेक लीलाएं हैं भगवान की, जिनसे ये स्थापित होता है कि भगवान और उनके आर्च्य विग्रह में कोई अंतर नहीं। जैसे चैतन्य चैतन्यमृता में आप एक कथा पढ़ते हो साक्षी गोपाल की, साक्षी गोपाल एक ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण, जिसने एक धनी ब्राह्मण का सहयोग दिया था अपनी यात्रा को सफल बनाने में। धनी ब्राह्मण बड़ा आभारी था गरीब ब्राह्मण का, वो कहने लगा तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे सहयोग के कारण मैं ये यात्रा कर पाया, मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ तुम्हारी। गरीब ब्राह्मण ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सेवा करूँ बिना किसी उम्मीद के। पर धनी ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए तुम्हारे लिए, मैं मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करा दूंगा। गरीब ब्राह्मण ने कहा आप इतने बड़े सेठ हो, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, कहाँ मानेंगे आपके घर वाले इस रिश्ते में। धनी ब्राह्मण ने कहा मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, जो मैं कहूंगा सब पालन करेंगे। तो गरीब ब्राह्मण गरीब जरूर था, वह मूर्ख नहीं था। उसने कहा कि अगर आप ये कराना ही चाहते हो तो ये कहिए भगवान गोपाल के सामने। समान जब धनी व्यक्ति घर लौटा और उसने अपने बेटे को सुनाई कथा, पत्नी बेटी को, और कहा अंत में मैंने इस गरीब ब्राह्मण को वचन दिया था कि मेरी बेटी की शादी उसके साथ होगी, घर वालों ने कहा संभव है कभी नहीं। पत्नी ने कहा मैं तो जहर पी लूंगी। और धनी ब्राह्मण संकट में था। गरीब ब्राह्मण ने राह देखी, तो फिर गरीब जब एक महीना गुजर गया था, गरीब ब्राह्मण आया धनी ब्राह्मण के पास, सेठ जी आपने वचन दिया था भूल गए। सेठ जी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। और फिर ये जब ब्राह्मणों दूसरे ब्राह्मणों को लेकर आया, दूसरे ब्राह्मण ने कहा ये अच्छा नहीं है सेठ जी, कि आपने वचन दिया उसका पालन नहीं कर रहे। तो धनी ब्राह्मण तो चुप रहा। उसके बेटे ने कहा ये झूठ है, तुम जानते नहीं ये गरीब ब्राह्मण कितना चालाक है, यात्रा के दौरान उसने पिता को भंग खिलाकर सब उसका धन काट ली, जेब काट लिया। मेरे पिता ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि झूठ है। तो अंत में धनी ब्राह्मण के पुत्र ने क्या कहा, कोई प्रमाण है क्या तुम्हारे पास कि मेरे पिता ने ये वचन दिया था? गरीब ब्राह्मण ने कहा है प्रमाण, कौन? गोपाल विग्रह। तो धनी ब्राह्मण का बेटा हंसने लगा, वो पत्थर की मूर्ति प्रमाण बनेगी? जाओ ले आओ, वो प्रमाण बनेगी तो मैं जरूर शादी करवा दूंगा। तो भक्त गया बड़ी श्रद्धा के साथ। जब भक्त ने निवेदन किया कि मेरी इज्जत खतरे में है, मुझे गलत दोष दिया जा रहा है, आप मेरी लाज बचाइए, गोपाल विग्रह ने कहा और मैं कैसे बचाऊं, मैं तो चल नहीं सकता, ये भगवान थे वृंदावन में, उन्होंने गवाही देने आना था उड़ीसा में। तो गरीब ब्राह्मण ने कहा अगर आप भगवान बोल सकते हो तो चल भी सकते हो। तो भगवान ने आहार स्वीकार किया और फिर भगवान साक्षी बने। अगर आप उड़ीसा की यात्रा में जाते हो तो जगन्नाथपुरी के शायद एक घंटे की दूरी पर ये साक्षी गोपाल का मंदिर आज भी है। तो ये कथा हमने क्यों सुनाई, ये स्थापित करने के लिए कि जो मूर्ति है ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति में स्वयं भगवान उपस्थित हैं। अगर आप सोचोगे ये पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति रहेगी, अगर आप सोचोगे कि यहां भगवान स्वयं उपस्थित हैं तो फिर आपको भगवान दिखेंगे। ये है निर्भर आपकी श्रद्धा के ऊपर। आप चैतन्य चैतन्यता में माधवेंद्रपुरी की कथा पढ़ते हो, बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, अगर किसी ने उन्हें कुछ खाने के लिए दे दिया तो खाते थे, नहीं तो भूखा सो जाते थे। तो भगवान ने एक दिन सपने में उन्हें कहा कि मैं तो इन भक्ति से बड़ा खुश हूं, पर मुझे मुसलमानों के हत्याचार से बचाने के लिए दबा दिया है इस स्थान पर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वहां से निकालो, मुझे गर्मी लग रही है बहुत। जब मुसलमानों का राज्य था तो वृंदावन के कई प्रसिद्ध मंदिर की मूर्तियों को नष्ट कर दिया था या कई मूर्तियों को उठाकर पुजारी जी जयपुर ले गए, जहाँ की हिंदू राजा था। तो जयपुर को कई भक्त गुप्त वृंदावन भी बुलाते हैं, क्योंकि अनेक मूर्तियाँ जो वहाँ हैं वो एक समय थी वृंदावन में। तो माधवेंद्रपुरी ने दूसरे साथियों को सपना सुनाया, सब ने निर्णय किया कि हाँ जाकर देखें, खोदें उधर देखें भगवान का बिगड़ा है या नहीं। उन्होंने खोदा, उसी स्थान पर बिगड़ा प्राप्त हुआ और माधवेंद्रपुरी ने दो दिन में योजना बना दी और ठाकुर जी की स्थापना भी कर दी दो दिन में। हम लोग जब मूर्ति स्थापना करते हैं आजकल हमें महीने लग जाते हैं तैयारी में, तो माधवेंद्रपुरी ने दो दिन में सारी तैयारी कर दी और दो साल इस प्रकार भगवान की उपासना होते गई। उस साल के बाद माधवेंद्रपुरी को फिर से एक सपना आया जिसमें भगवान ने कहा मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए तुम चंदन लेकर आओ। चंदन, गर्मियों के मौसम में हम भगवान को चंदन लगाते हैं पर सर्दियों में नहीं लगाते। माधवेंद्रपुरी ने दो ब्राह्मणों को, दो भक्तों को ब्राह्मण दीक्षा दी, शिक्षा दी कैसे गोपाल विग्रह की सेवा की जाती है और वो आगे बढ़े क्या लाने के लिए, कहाँ, जगन्नाथपुरी से। तो वहाँ आगे बढ़े और रास्ते में रेमुना पहुंचे, जहाँ की एक बहुत प्राचीन राधा गोपीनाथ का मंदिर है। ये ऐतिहासिक मंदिर है, कहा जाता है, पता नहीं सच है, कहा जाता है कि इन मूर्तियाँ जो हैं ये भगवान राम के समय की हैं, भगवान राम ने खुद अपने हाथों से बनाया था जब उन्होंने सीता को कहा कि मैं द्वारपर युग में प्रकट होऊंगा इस रूप में। तो उस मंदिर में जो खीर खिलाई जाती है भगवान को, उस खीर को कहा जाता है अमृत केली। अमृत केली का अर्थ है इतनी मीठी, इतना अच्छा टेस्ट कि ऐसे लगता है कि स्वर्ग में ये खीर बनी है। तो माधवेंद्रपुरी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि अगर मुझे खीर चखने का मौका मिल जाए तो मैं अपने गोपाल के लिए भी ऐसी खीर बनाऊंगा। पर ये इच्छा प्रकट हुई जब भगवान को भोग लग रहा था। तो जब नियम ये है जब आप भोग बना रहे हो आपका भाव क्या होना चाहिए, ये भोग मैं बना रहा हूँ भगवान के लिए, ये नहीं मेरी जबान के चस्के के लिए, और हम जल्दी से ऑफर करेंगे फिर जल्दी से खा लेंगे। और जब भोग लग रहा है, हम खाने का सोचते भी, जब भोग लग जाता है 15-20 मिनट के लिए फिर निकाल कर खा सकते। परमात्मा ने पूरी नई इच्छा प्रकट की। जब भगवान को भोग लग रहा था तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि मैं ये इच्छा प्रकट हुई है, तो भगवान को भोग लग रहा है, तो शर्मिंदा होकर चले गए यमुना मंदिर से शहर में जाप करने के लिए। भगवान अंतर्यामी हैं, हर एक हृदय में विराजमान हैं। भगवान ने क्या किया, वो खीर के प्याले जो था एक प्याला को चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया, और जो पुजारी था उसे सपने में भगवान ने आदेश दिया। भगवान ने सपने में कहा, मैंने एक खीर का प्याला मेरे प्रिय भक्त महादंडपुरी के लिए चुराया है, तुम इस स्थान में प्राप्त करोगे और शहर में जाकर उसे दो दीजिए। पुजारी को विश्वास नहीं हुआ। पुजारी ने कहा, सोचा भगवान ने खीर का प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया है, कैसे संभव है। फिर वो गए, भगवान को जगाया और देखा सचमुच खीर का प्याला था पर्दे के पीछे। पुजारी सोचने लगे, कौन है ये भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी प्रशंसा के लिए भगवान ने खीर का प्याला चुराया। फिर जैसे भगवान ने आदेश दिया था, गए बाजार में महादंडपुरी को खोजने के लिए। और खोजने पर उन्हें कहा, तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी प्रशंसा के लिए भगवान ने खुद खीर का प्याला चुराया। तो उस दिन के पश्चात राधा गोपीनाथ विग्रह का नाम क्या बदल गया है, खीर चोर गोपीनाथ, जिन्होंने खीर भी चुराई। तो ये दो घटनाएं हमने इसलिए आपको दी, आपको याद दिलाने के लिए कि इस आचार्य विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। भगवान अपने आप को शालग्राम शीला के रूप में भी प्रकट करते हैं। इस शालग्राम शीला और भगवान में कोई अंतर नहीं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, उन्हें 12 शालग्राम शीला प्राप्त हुए थे। वो सोच रहे थे कि मैं शालग्राम शीला की पूजा के योग्य नहीं हूं, तो गए गंडकी नदी जहां से उन्होंने प्राप्त की थी, और इन शालग्राम शीला को नदी में छोड़ रहे थे। तो जब भी छोड़ते थे ये शीला टपक कर उनके हाथों में आ जाते थे वापस। तो कई बार उन्होंने प्रयास किया छोड़ने के लिए, पर वापस आ जाते थे उनके हाथ में। तो उन्होंने अंत में सोचा, शायद भगवान की इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो लेकर आए, वृंदावन में निवास कर रहे थे। ये जो 6 गोस्वामी हैं, इन्हें मंजारी का अवतार माना जाता है। जो मंजारी हैं ये गोपियां का सहयोग देती हैं, और गोपियां राधा रानी का सहयोग देती हैं। किसकी सेवा में, भगवान की सेवा में। ये 6 के 6 गोस्वामी मंजारियों के अवतार हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी शालग्राम शीला की पूजा कर रहे थे। एक दिन एक व्यापारी, शालग्राम शीला की पूजा करना सरल है, चंदन तुलसी कोई वस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं। एक दिन एक धनी व्यापारी आया जिसने उनको साड़ी और गहने भेंट में दी। तो गोपाल भट्ट सोच रहे थे, मैं ये साड़ी और वस्त्रों से क्या करूँगा, अगर मेरे पास विग्रह होता भगवान का तो मैं इस साड़ी से भगवान के वस्त्र बना सकता था, पर शालग्राम शिला है, मैं क्या करूँगा। ये सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई, और जब सुबह जागे तो उन्होंने क्या देखा, वो दामोदर शिला ने कौन सा रूप ग्रहण कर लिया था, राधा रमन का रूप धारण कर लिया। ये मूर्ति आज भी है वृंदावन में, राधा रमन मंदिर में, जहाँ की गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि भी है। और कहा जाता है कि मूर्ति इतनी छोटी है, इसलिए मुसलमान सपाई जब वृंदावन में आए थे मूर्तियों की खोज में नष्ट करने के लिए, ये मूर्ति को खोज नहीं पाए। तो अनेक उदाहरण है। तो दूसरे शब्दों में भगवान अपने आप को प्रकट करते किस रूप में, अच्छा। कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी अभी हल्का हो गया, पहले ठीक था। कभी कभी लोग कहते हैं, कभी कभी लोग आचार्य विग्रह में विश्वास इतना नहीं करते, पर प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था एक भक्त को, जिसमें उन्होंने कहा, हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर से आप परिचित हो, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर, दिन में कितनी बार हरि नाम का उच्चारण जाप करते थे, तो 3 लाख बार जाप समाप्त किए बिना ना कुछ खाते थे ना पीते थे। एक समय वहाँ के जमींदार ने एक वैश्य को भेजा था उन्हें आकर्षित करने के लिए, परिणाम ये हुआ कि उनके पवित्र उच्चारण को सुनने से वैश्य ही भक्त बन गई। तो प्रभुपाद जी ने एक पत्र में कहा, हरिदास ठाकुर के लिए संभव था, नामाचार्य हैं, ब्रह्मा जी के अवतार हैं, संभव था कि केवल हरि नाम करें, पर हमारे लिए संभव नहीं है। तो प्रभुपाद ने उस पत्र में कहा, इसलिए हम हरि नाम के साथ भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा भी करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने आचार्य विग्रह की पूजा स्थापित की इस्कॉन केंद्रों में। जब प्रभुपाद जी पहले आए थे मंदिर खोलने के लिए, पहले मंदिर खुले थे, एक पंचतत्व की तस्वीर की हम पूजा करते थे। फिर आस्ते आस्ते प्रभुपाद जी ने गौणिताई की स्थापना की। फिर एक दिन प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी जो एक स्टोर एक दुकान से एक मूर्ति खरीद कर ले आई और प्रभुपाद जी के सामने रखी। प्रभुपाद जी ने जैसे वो मूर्ति को देखा तुरंत प्रणाम किया और पूछा, क्या इसके साथ और भी जोड़ी थी उस दुकान में, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्तियां बिक रही थी इंडियन डॉल्स के रूप में, भगवान की मूर्ति के रूप में नहीं, इंडियन गुड़िया के रूप में। जैसे दिल्ली में एक कॉटेज एम्पोरियम है जनपद में, जहाँ सब विदेशी लोग महंगी चीज़ों को खरीदने आते हैं, तो वहाँ वो जगन्नाथ की मूर्तियाँ भी बेचते हैं। तो लोग ये भावना से नहीं खरीदे भगवान है, वो सोचते हैं ये इंडियन डॉल है। तो प्रभुपाद जी की एक शिष्य थी मालती दासी, तो वो मूर्ति को ले आई, तो प्रभुपाद जी ने प्रणाम करके पूछा, इसके साथ और भी थी। तो फिर वापस गई उस दुकान में और देखा, हाँ और भी थी। तो फिर वो तीनों को ले आई, किसे, जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, वो प्रभुपाद जी के सामने रखा। प्रभुपाद जी ने तीनों को प्रणाम किया और महाराज इंद्रदुम्ना की कथा सुनाई, किस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी प्रकट हुए। जिसके पश्चात प्रभुपाद जी ने पूछा अपने भक्तों से, किसी में कला है मूर्ति बनाने की, तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे श्याम सुंदर, वो थे तो केमिकल इंजीनियर, पर उनमें कला थी। तो प्रभुपाद जी ने निर्देशन दिया और फिर उन्होंने जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की मूर्ति बनाई, जो कि प्रभुपाद जी ने स्थापित की कौन से मंदिर में, सेंट फ्रांसिस मंदिर में। तो प्रभुपाद जी ने पहले तो हमें पंचतत्व की तस्वीर दी, पहले तो इन तस्वीरों में हमको हम हार भी नहीं चढ़ाते थे, फिर आस्ते आस्ते का भगवान को हार चढ़ाना चाहिए, फिर गौणिताय की स्थापना की, फिर जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की स्थापना की, और फिर प्रभा जी ने राधा कृष्ण की स्थापना की। तो इस आर्यभट्ट और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के लिए हमें सबसे खूबसूरत चीज़ें बनानी चाहिए। और हर चीज़ के स्वामी कौन है? भगवान। जब प्रभा जी ने राधा कृष्ण मूर्तियों की स्थापना की लंदन में, उन्होंने क्या नाम दिया? श्री श्री लंदन ईश्वर, मतलब कि लंदन शहर के असली स्वामी कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। जब प्रभा जी ने पेरिस में स्थापना की मूर्ति की, उन्हें नाम दिया श्री श्री पेरिस ईश्वर, पेरिस शहर के असली स्वामी। तो आपके पूना में श्री श्री राधा कुंज बिहारी हैं, शायद श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र हैं, वृंदावन चंद्र हैं। तो पूना के असली स्वामी मालिक कौन है? श्री श्री राधा कुंज बिहारी और वो हैं असली स्वामी। जैसे जब महात्मा पुरी ने विग्रह की स्थापना की गोवर्धन में, तो सारे ब्रिजवासी जो थे गोवर्धन में, किसी ने गाय दान में दिया, किसी ने जमीन दान में दी, और थोड़े दिनों में ही गोपाल विग्रह बड़े धनी बन गए थे। सारे जमीन और गाय के मालिक। तो भक्तों का क्या भाव रहता है? भक्तों का ये भाव रहता है कि हम झोपड़ी में भी रह लेंगे, पर भगवान के लिए क्या बनाएंगे? महल बनाएंगे। और ये उदाहरण, ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? गोस्वामियों के जीवन से। जितने वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिर हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने जब इन गोस्वामियों को वृंदावन भेजा, उन्हें एक आदेश तो दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, दूसरा आदेश ये था मंदिरों का निर्माण करने के लिए। तो जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं ये सब बने थे गोस्वामियों की प्रेरणा से। पर अपने रहने के लिए गोस्वामी ने कोई महल बनाया नहीं, खुद रहते थे कहाँ? अलग अलग वृक्ष के नीचे। आज तो वृंदावन की स्थिति ऐसी है कि अगर आपकी इच्छा हो भी अलग अलग वृक्ष के नीचे रहने की, पेड़ है ही नहीं वहाँ, सारे पेड़ों को काट दिया है, सब जगह बिल्डिंग्स बन गई हैं कि नहीं। तो भक्तों का यह भाव रहता है कि हम अपने लिए सारा जीवन भी बिता देंगे। सनातन गोस्वामी ने मदन मोहन मंदिर की स्थापना की, कि मदन मोहन विग्रह जब उन्हें प्राप्त हुआ, उस समय सनातन गोस्वामी एक पेड़ के नीचे रह रहे थे और अपने भक्त को, अपने भगवान को सूखी रोटी खिलाते थे, क्योंकि यही थी उनकी योग्यता। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम क्या? तुलसी का पत्र। फलम फल, पुष्पम फूल जल। प्रेम और भक्ति से दोगे, मैं स्वीकार करूंगा। तो भगवान हमारी सेवा लेते हैं, हमारी सेवा निर्भर है किसके ऊपर? हमारी श्रद्धा और सेवा के ऊपर। अगर भगवान ने आपको ज़्यादा योग्यता दी है तो ज़्यादा सेवा करो। अगर सनातन गोस्वामी एक समय भगवान को सूखी चपाती खिला रहे थे, क्योंकि और उनके पास कोई सुविधा नहीं थी। जब सनातन और रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य का कार्य कर रहे थे, उस समय उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उस समय जब रूप गोस्वामी ने सरकारी नौकरी त्यागी, तो उनके पास इतने सोने के सिक्के थे कि पूरी नाव भर गई थी सोने के सिक्कों के साथ। पर जब सब त्याग कर वृंदावन में आए तो मधुकरी करके जी रहे थे पेड़ के नीचे। रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय के करोड़पति पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता सबसे धनी व्यक्ति थे लगभग। जब वो वृंदावन में आए तो बिल्कुल सादा जीवन मधुकर करके जी रहे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं किस रूप में, आचार्य विग्रह के रूप में। तो प्रभुपाद जी के अनेक पत्र हैं और ग्रंथ में प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते थे कि हमें हरि नाम के साथ भगवान की आचार्य विग्रह की पूजा भी करनी है। और ये आचार्य विग्रह की पूजा में दो नियम बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक है पंक्चुअलिटी, दूसरा है स्वच्छता, क्लीनिनेस। ये नहीं कि मंगल आरती एक दिन 6 बजे होगी, एक दिन 5 बजे, एक दिन 5:30 बजे। कई बार हम मंदिरों में जब जाते हैं पूछते हैं आपकी मंगल आरती कब होती है। हाँ, जब पुजारी जी उठ जाए, गर्मियों में जल्दी होती है, सर्दियों में देर से होती है। हमारे इस्कॉन केंद्रों में सारे विश्व में एक ही समय होती है। आप मॉस्को में 4 बजे मंगल आरती होती है, इतने ठंडे मौसम में भी। तो जब आप आचार्य विग्रह की पूजा करते हो, खास करके जब इनकी स्थापना मंदिर में हुई है, तो इनकी पूजा उपासना होनी चाहिए ठीक समय पर। और स्वच्छता, क्लीनिनेस, भगवान की सेवा बिल्कुल साफ स्थान में होनी चाहिए। तो अगर आप हरि नाम का जाप करोगे, ये नहीं कि आचार्य विग्रह की पूजा करो हरि नाम की पूजा नहीं करो, ये भी नहीं कि आप केवल ये सोचो कि भगवान आचार्य विग्रह में हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करो और दूसरे वैष्णव की पूजा नहीं करो। भगवान कहते हैं कि अगर मेरी सेवा करनी है तो आचार्य विग्रह की पूजा, और ये समझो कि भगवान विस्तार करके हरे के हृदय में उपस्थित हैं। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। क्योंकि जो एकदम कनिष्ठ अधिकारी भक्त है वो सोचते हैं हाँ भगवान की मूर्ति में तो भगवान है, मैं मानता हूँ, पर ये सब जो है भक्त, ये सब पतितात्मा है, इनके लिए मेरे इनके प्रति मेरा कोई आदर नहीं है। नहीं, जब हम भगवान के आचार्य विग्रह की पूजा करें, साथ में हमें उनके भक्तों के को भी आदर देना चाहिए, क्योंकि भगवान उपस्थित हैं हर एक के हृदय में। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो कलियुग में भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए हमें हरि नाम की आवश्यकता है। यही नहीं कि केवल हरि नाम की आवश्यकता है, उस साथ में आचार्य विग्रह। इसके लिए आप बेशक अपने घर में आचार्य विग्रह नहीं रखो, पर इसको के हर केंद्र में आचार्य विग्रह की मूर्ति है, या गौरताय, या जगन्नाथ सुभद्रा बलराम, या पंचतत्व, या कृष्ण बलराम, या राधा कृष्ण, हर मंदिर में आचार्य विग्रह की मूर्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, हमें सेवा का माध्यम देते हैं। तो हम हरि नाम और आचार्य विग्रह की उपासना द्वारा भक्ति के मार्ग में परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही आवश्यक हैं। और भक्त का यह भाव है, वैष्णव भक्त का, कि भगवान उनकी मूर्ति में कुछ अंतर नहीं। इसलिए हम जब प्रसाद खाते हैं पहले किसको चढ़ाते हैं? भगवान की मूर्ति भगवान के चरणों में रखते हैं। भगवान गीता में क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है? केवल पाप खा रहा है। तो हम भगवान के चरणों में प्रसाद रखते हैं और मंत्र के उच्चारण से भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके ये प्रसाद स्वीकार कीजिए। और जब भगवान स्वीकार करते हैं उसके पश्चात हम खाते हैं। जो मायावादी भाव के व्यक्ति हैं, जो ये नहीं मानते कि भगवान उपस्थित हैं उनके आचार्य विग्रह के रूप में, वो कहेंगे देखो ये मूर्ख वैष्णवों को कहते हैं भगवान ने खा लिया, थाली तो वैसे की वैसी है। हम जब खाते हैं तो थाली खाली हो जाती है ना, और भगवान जब खाते हैं वो थाली भरी हुई होती है। और भगवान जब खाते हैं उनकी थूक उस भोजन में मिल जाती है। साधारण स्थिति में किसकी थूक आप पर आए तो बड़ा अपमान महसूस करते हैं ना, कहते क्या देखता नहीं है, पर जब प्रसाद खाते हैं तो उसमें भगवान की भी थूक है। तो जो मायावादी भाव के लोग क्या कहते हैं, वैष्णव मूर्ख हैं, कहते हैं भगवान ने खा लिया जब प्लेट वैसे की वैसे भरी हुई है। तो भगवान की क्या योग्यता है। ब्रह्मा संहिता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अंग ने यस सकलेंद्र वृत्ति मानती, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान ये खाते हैं कैसे, अपनी आंखों से और कानों से। आंखों से देख लेते हैं, कानों से आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो जब हम भोग लगाते हैं भगवान इसे नहीं खाते, भगवान इस प्रसाद को खाते हैं। अंत में ये निर्भर है आपकी श्रद्धा के ऊपर। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान के आर्य विग्रह को बहुत बल दिया। चैतन्य महाप्रभु राधा कीचड़ गोपीनाथ के मंदिर के सामने नाच रहे थे, जब वो नाच रहे थे तो भगवान की एक हार उन पर गिर गई। जब ये हार गिरी उन पर तो उन्होंने इसे बड़ा अच्छा लक्षण माना, और उन्होंने फिर माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई, क्योंकि माधवेंद्रपुरी कौन थे, उनके परम गुरु थे ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी। जब ठाकुर भक्तिनोद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे जगन्नाथपुरी में, ठाकुर भक्तिनोद को चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति माना जाता है, नामो भक्तु विनोदाय सच्चिदानंद नाम ने। तो ठाकुर भक्तिनोद जी ने शुद्ध कृष्णा भक्ति की स्थापना की। तो मैजिस्ट्रेट थे उन दिनों में, इससे ऊंचा पद भारतीयों को नहीं दिया जाता था। तो उन्होंने प्रार्थना की थी, हे भगवान कोई ऐसी औलाद भेजना जो मेरे बाद ये कार्य को आगे बढ़ा सके। और भगवान ने उन्हें एक पुत्र भेजा बिमल प्रसाद। तो ठाकुर भक्ति ने ये रिवाज था उन दिनों में, रथ यात्रा की रथ यात्रा रुकती थी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के घर के सामने। तो जब वो रथ रुका था उनके सामने, तो बिमल ठाकुर भक्तियों की पत्नी भगवती देवी ने अपने छोटे बेटे बिमल प्रसाद को जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। जब रखा तो जगन्नाथ जी का एक हार गिर गया उन पर। तो ठाकुर भक्तियों जी ने इसे बड़ा सुंदर लक्षण स्वीकार किया और सोचा यह है वो बेटा जिसकी मैं राह देख रहा था। तो भगवान के मंदिर में आप जाते हो, और जब आप भगवान के सामने आओ, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान के सामने आता है भगवान के आर्य विग्रह के सामने, उसे उस आचार्य विग्रह को क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, पूरा प्रणाम करें। हमें अब अफसोस होता है ये देखकर कि कई बार लोग आते हैं आचार्य विग्रह के सामने और खड़े होकर ही नमस्ते कर देते हैं। हमें जब आप भगवान की मूर्ति के सामने आओ तो क्या करना चाहिए, क्या प्रणाम करना चाहिए। और जैसे आप खाते हो वैसे भगवान भी खाते हैं, है ना। इसके लिए इस्कॉन मंदिरों में भगवान को भोग लगता है 6 बार, जगन्नाथपुरी में भगवान को भोग लगता है कितनी बार, 64 बार, सारा दिन भोग लगते रहता है जगन्नाथपुरी में। और तो भगवान के लिए कोई कार्य असंभव नहीं। तो भगवान के आर्य विग्रह भगवान में कोई अंतर नहीं। और चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर बड़ा बल दिया था। आज के दिन हम जयदेव गोस्वामी के तिरुभाव तेरे भाव को भी मना रहे हैं। जयदेव गोस्वामी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु जी से 300 साल पूर्व, और उन्होंने उनके पास भी एक बड़ा सुंदर विग्रह था जिसका नाम था शिशी राधा माधव। तो 800 साल पहले भी भगवान की पूजा की जा रही थी आर्च विग्रह के रूप में। और जयदेव गोस्वामी की अनेक रचनाएं हैं, जिसमें एक है गीता गोविंद, जिसमें उन्होंने शुद्ध रूप से स्थापित किया है राधा कृष्ण का संबंध। जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं वो राधा कृष्ण का संबंध नहीं समझ पाते, वो सोचते हैं ये कोई भौतिक रिश्ता है, पर यह आध्यात्मिक रिश्ता। और गीता गोविंद में बड़े गहराई के साथ उन्होंने इस विषय की चर्चा की है। गोपाल जयदेव गोस्वामी ये गीता गोविंद की रचना कर रहे थे और ये लिखना चाहते थे कि एक समय राधा रानी भगवान पर बड़ी क्रोधित हो गई थी। तो राधा रानी क्रोध में थी तो भगवान ने उनके चरण छुए, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे ये मैं कैसे लिखूंगा। कृष्ण भगवान परम भगवान हैं, वो राधा रानी के चरण को छू रहे हैं, लोग इसे गलत समझ पाएंगे। तो वो लिखे बिना वो चले गए गंगा में स्नान करने के लिए। भगवान ने क्या किया, भगवान जैसे वो घर से चले तुरंत वहाँ आ गए जयदेव गोस्वामी के रूप में, और जहाँ वो लिख रहे थे गीत गोविंद वहाँ उन्होंने जो वो लिखना चाहते थे वो भाव भगवान ने खुद अपने हाथों से लिख लिया। जयदेव गोस्वामी की पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती ने देखा मेरा पति अभी गया स्नान करने, एक मिनट में लौट के आ गया। तो उन्होंने पूछा आप तो अभी कहे थे स्नान करने, इतनी जल्दी कैसे आ गए लौट के? मैं कुछ भूल गया था लिखना, तो मैं वो लिख कर फिर जाऊंगा वापस। तो पद्मावती ने उन्हें खाना खिलाया और फिर स्नान करके जयदेव गोस्वामी लौटे। जो वो लौटे तो उनकी पत्नी ने कहा आप फिर से आ गए, अभी तो हवा खा के गए थे। तो जयदेव गोस्वामी मैं तो अभी आ रहा हूँ। जयदेव गोस्वामी ने जाके देखा जो भाव वो प्रकट करना चाहते थे कविता में, वो किसी और ने, उस जयदेव भगवान आए थे वो भाव लिख कर चले गए। जयदेव गोस्वामी पहचान गए वो जो व्यक्ति आया था वो कौन था, स्वयं भगवान थे। भगवान जयदेव गोस्वामी की सेवा से इतने प्रसन्न थे, जयदेव गोस्वामी हिचक रहे थे देखने से कि जब राधा रानी का क्रोध आया भगवान झुके उनके चरण को छूने के लिए, भगवान खुद ही आ गए और वो रचना लिख वो भाव प्रकट किया। क्योंकि जयदेव गोस्वामी भाव प्रकट करने से शर्मा रहे थे। तो जयदेव गोस्वामी ने पद्मावती को कहा तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुमने भगवान की सेवा की। तो जयदेव गोस्वामी ने गीता गोविंद की रचना की, दशावतार की भी रचना की, और उस समय देवियों द्वारा जगन्नाथ जी की प्रशंसा के लिए गीत गोविंद रोज गाया जाता है। आज तक जगन्नाथ मंदिर में उनकी रचना गीत गोविंद की को रोज रात को गाया जाता है भगवान के विश्राम करने से पहले। तो भगवान आर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, और भगवान को हम भोजन खिलाते हैं, भगवान को विश्राम के लिए समय देते हैं। आप लोग विश्राम करते हो, हाँ भगवान भी करते हैं। इसका मंदिरों में 1 बजे भगवान विश्राम करते हैं, फिर 4:15 बजे जागते हैं, है ना। कई मंदिरों में आप देखते हो कि वो मूर्तियों को खुला रखते हैं सारे दिन, हाँ, पर फिर 9 बजे इस्कॉन मंदिर में भगवान को मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर हम रात को भगवान के वस्त्र बदलते हैं, फिर भगवान को 10 बजे सुलाते हैं। और आप में से जिनके पास ब्राह्मण दीक्षा है, वे कभी ऑल्टर में गए हो तो आपने देखा होगा भगवान का मृणाल को सुलाते हैं, ऑल्टर के पीछे भगवान का बिस्तरा है, तो भगवान बिस्तरे में सोते हैं और सोवा पुजारी जी मंत्र के उच्चारण से भगवान को जगाते हैं। तो दूसरे शब्द में, क्योंकि हम स्वीकार कर रहे हैं कि इस आर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं, इसीलिए हम इस विग्रह को भोजन खिलाते हैं, पानी देते हैं, स्नान करवाते हैं। जैसे ये पुष्य अभिषेक, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करवाना। तो हम भगवान को अनेक वस्तुओं द्वारा रोज भगवान का अभिषेक करते हैं। वो अभिषेक का पानी आप पीते हो किस रूप में? चरणामृता के रूप में। तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि भगवान कलियुग की प्रजा के उद्धार के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं, एक है हरि नाम और दूसरा है उनके आचार्य विग्रह के रूप में। और इस आचार्य विग्रह भगवान में कोई अंतर है? नहीं है। तो हम जब आचार्य विग्रह को देखते हैं, मैं बड़े ध्यान से उनके चरणों को देखना चाहिए, उनको ध्यान हृदय में बिठाना चाहिए। भगवान कहते हैं मनमना भाव मन भक्तो मदया जी मन नमस्कुरु मन वाचे सत्यम देव प्रतिजने प्रियोश में, मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो। तो कई बार लोग पूछते हैं अब भगवान का चिंतन कैसे करें? तो भगवान का चिंतन करने के अनेक साधन हैं। एक है भगवान के आर्च विग्रह का स्मरण करो। तो आज इंटरनेट की कृपा से सब इंटरनेट की कृपा प्राप्त कर रहे हो। इंटरनेट के द्वारा कृपा भी है और दोष भी है। तो आज इंटरनेट के कारण अब इस्कॉन के कई मंदिरों की आर्चा विग्रह का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। 5 मिनट में आप राधा माधव और हस्त सखी का दर्शन ले सकते हो, कृष्णा बालराम का, राधा राज बिहारी का और अनेक मंदिरों का, है कि नहीं? तो आप इन मूर्तियों को अपने हृदय में बिठाओ। मैं कई भक्तों को जानता हूँ जो कि लगभग सारे इंटरनेट द्वारा जो मूर्तियों का दर्शन मिलता है रोज लेते हैं उनका दर्शन। तो भगवान के आर्च विग्रह का चिंतन करो। आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने? आपको याद है राधा कुंज बिहारी के वस्त्रों का क्या रंग था? आज आपको याद तो फूलों से ढक गए थे, तो इसमें हम देख नहीं। तो चलो कल देख लेना। जब भगवान के आचार्य विग्रह का दर्शन करो तो ये देखो कौन से रंग का वस्त्र पहने हैं। आप चैतन्य चरितमृता में पढ़ते हो एक कथा कि एक राजा थे उड़ीसा का जिनके नाम थे महाराज प्रतापुद्रा। उनकी बड़ी इच्छा थी महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। महाप्रभु इनकार करते गए उनकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए। तो फिर महाप्रभु ने अपने वस्त्र भेजे जो राजा ने उपासना की, जैसे भगवान की उपासना करते हैं। तो भगवान के जो वस्त्र हैं उनकी भी हमें इज्जत करनी चाहिए। जो फूल बढ़ार बढ़ार भगवान को चढ़ाया जाता है उसकी भी कदर होनी चाहिए। तो भगवान की आचार्य विग्रह का स्मरण करो। तो भगवान के आचार्य विग्रह का स्मरण करो, लीलाओं का स्मरण करो, उनके उपदेश का स्मरण करो और हरि नाम की महिमा का स्मरण करो। इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना दो। तो आज आप सब उपस्थित थे पुष्प अभिषेक के में। इस मौसम में ज्यादा फूल उगते हैं, तो ज्यादा फूल उगते हैं तो भक्त क्या सोचता है? मुझे इन फूलों को चढ़ाने दो, भगवान की खूबसूरती को बढ़ाने दो। भौतिक समाज में सब खूबसूरत बनना चाहते हैं कि नहीं। हमारे एक भक्त हैं जिनका एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, कहता है पहले तो औरतें आती थी ज्यादा, अब तो कहता है आदमी भी आते हैं औरतें भी आते तो सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं। तो भक्त का क्या भाव रहता है, मुझे अपने भगवान को सबसे खूबसूरत बनाना है, इसलिए अच्छे वस्त्र, अच्छे गहने, अच्छे फूल, अच्छे हार। तो आप सबसे निवेदन है, हरि नाम पर बल दीजिए, कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार, ध्यान पूर्वक जाप कीजिए और भगवान की आर्च विग्रह श्रद्धा और भक्ति के साथ सेवा करना ये आवश्यक है। और आपका सौभाग्य है आपके इस मंदिर में श्री श्री गोणिताय और श्री श्री राधा कुंज बिहारी हैं, आपके दूसरे मंदिर में श्री गोणिताय राधा श्याम चंद्र वृंदावन चंद्र और जगन्नाथ सुभद्रा बलराम और बालाजी, तो इन विग्रह की सेवा करो श्रद्धा के साथ। घर में नहीं रखना चाहते तो बेशक मत रखो, मंदिर आओ, भगवान के सामने प्रणाम करो, भगवान के विग्रह का चिंतन करो और इस प्रकार आप अपने जीवन को आप सुखी बनाओगे। इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा आचार्य विग्रह की सेवा के द्वारा भौतिक आकर्षण टूटेगा और आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा। ये होना चाहिए हम सबका उद्देश्य, आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ाना और भौतिक आकर्षण घटाना। जो संभव है हरि नाम के माध्यम से, ग्रंथों के अध्ययन से और आचार्य विग्रह की सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा।